जमीन मुसलसल सूरज के गिर्द घूम रही है। जितनी देर हम बैठे हो जमीन जितना घूमी सूरज के गिर्द, वहां अल्लाह चाहे तो निशान लगवा सकता है। मैं इसको तब महसूस करती हूँ जब मुझे जहाज में नमाज पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत ही मजा आता है उस वक्त। मेरा दिल चाहता है मैं सर सजदे से ना उठाऊं, ये सोचकर कि जितना भी फासला तय कर ले क्योंकि मेरे यहाँ सजदों के निशान लग जाए। क्यों? कि ये दुनिया भी क्या है, ये जमीन एक बड़ा सा जहाज है, इस फिजा में तैर रहा है और जहां जहां से गुजर रहा है। अब देखिए जब जहाज गुजरता है ना तो पीछे धुआं छोड़ता है, ये धुआं ही असल में आसार है। तो लिहाजा नेकी करते वक्त, और इसी तरह दूसरी बात, अल्लाह ना करे हराम चीज को हाथ लग गया, किसी के बिजनेस में कोई ऐसी चीज है, वो जितनी बार बोतल उठाई, रखी, साफ की, कस्टमर को देने के लिए पैक की, जहां जहां उस पे निशान लगे, कल क्यामत के दिन वो तुलेंगे कि अल्लाह इन हाथों से इसने हराम की चीज पकड़ी थी। कोई किसी का जूता चोरी करके निकलता है कि चलो अपना छोड़ूं किसी का नया पहन जाऊं, क्या हुआ 100 200 का किसी का नुकसान किया, लेकिन वो जूता पहन के जहां जहां गुजरेगा, मा कद्दम हुआ सारा, जमीन प्रिंट्स लेगी। ये शऊर हो जाए तो इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकता किसी पे ज्यादती करे। आपने फरमाया जिसने चर्ब जुबानी से या धोखे से या जुल्म से किसी की जमीन का कोई टुकड़ा छीन लिया, कल क्यामत के दिन अल्लाह ताला उस जमीन के नीचे की जो 6 और जमीने यानी 7 जमीनों के तौक उसकी गर्दन में पहनाएगा। कहाँ कोई किसी की जायदाद छीने, कहाँ चचा भतीजों की जायदादें छीन ले, कहाँ भाई भाई की जायदाद पे कब्जा कर ले, ये तो हो ही नहीं सकता जब ये शऊर होता है कि हम जो कर रहे हैं वो नोट हो रहा है, स्कैनर्स में आ रहा है। ये थी पहली चीज आसार की। दूसरी किस्म आसार हैं इफेक्ट्स के मानों में। पहला क्या था? प्रिंट्स। अब दूसरा इफेक्ट्स। हम में से हर एक अपने इर्द गिर्द वालों पे कुछ इफेक्ट्स छोड़ रहा है ना? कुछ ना कुछ हर बंदे का असर दूसरे पे पड़ता है ना। हर माँ अपने बच्चों पे अपने असरात छोड़ रही है। जो माँ करती है बच्चे खुद ही करेंगे। वो आप भेजें उनको दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में भेजें, जो सीख के आएंगे घर में देखेंगे माँ तो ऐसी है नहीं, वो कहेंगे छोड़ो हमारा आइडियल तो हमारी माँ है, टीचर को क्या करें। हर माँ अपना असर छोड़ रही है, हर बाप, हर भाई, हर दोस्त अपनी दोस्त के ऊपर असर छोड़ती है। क्यों? अल्लाह के नबी ने कहा कि अलमर वाला दीन ही खलील ही, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। बस सोच समझ के दोस्त बनाओ, किसको दोस्त बना रहे हो? हम वही हो जाते हैं कुछ अरसे के बाद जो हमारे दोस्त होते हैं। इसलिए अच्छी सोहबत ढूंढनी चाहिए। किसी का एक वाक्य याद आ गया कि लैलतुल कद्र की रातें थी जो आखिरी होती हैं इबादत की, तो एक आलिम थे, सारी रात दुआ मांगते रहे, अल्लाह अच्छा दोस्त दे दे, अल्लाह अच्छा दोस्त दे दे। लोगों ने कहा कि ये क्या किया आपने, तो रात ही जाया कर दी, एक ही दुआ मांगते रहे, कुछ और मांगते। कहते कि मैंने जाया नहीं की, क्योंकि अगर अल्लाह ने ये दुआ कबूल कर ली तो अच्छा दोस्त तो अच्छा दीन है, तो मैंने तो दुनिया की सारी नेमतें मांग ली। तो लिहाजा हम कैसे असरात छोड़ रहे हैं, हम में से हर एक सोच ले। एक शख्स आता है तो महफिल और सुर में आती है, और जोश आता है। लोग कहते हैं फलां के बगैर तो महफिल सजती नहीं है, उनके बगैर तो मजा ही नहीं आ रहा, और एक आता है तो लोग अपने कपड़े सही करने लगते हैं। फर्क है ना, इफेक्ट्स का फर्क है। अगर हम अपने घर वालों को चाहते हैं कि वो अच्छे बने तो हमें अच्छा बनना होगा। तीसरी और आखिरी चीज जिसको यहां डिस्कस करूंगी इस आयत के नाते से, वो है आसार क्या है जो हम मरने के बाद अपने पीछे छोड़ जाएंगे, और वो है हमारी औलादें। ये निशानियां हैं। कभी कोई बहू बेटी का इंतकाल हो जाए तो बूढ़ी नानी या दादी बच्चे को पालती और साथ रोती है, कहती है खुद चली गई, अपनी निशानी छोड़ गई, ये निशानियां देके चली गई मुझे। ये बच्चे हमारी निशानियां हैं। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, ये पीछे हमारी जन्नत या जहन्नुम को कंफर्म कराएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है जिसका तذکرہ शुरू में भी हुआ कि इज़ा मातल इंसाना, जब एक इंसान मर जाता है, इनक़ते अमलुहु, उसके अमल मुनक़ते, स्टॉप, बस रुक गई सुई वहीं, सब खत्म। अब जो मर्जी पढ़ें, जो मर्जी करें, पेपर छिन गया, आपकी खुशी आप करते रहें, लेकिन पेपर छिन गया, और अगर हम स्टिल कुछ करना चाहते हैं तो वो ऐसे ही है जैसे पेपर देने के बाद घर आके कोई एग्जामिनर को कहे कि ये कुछ मुझे याद आ गया है सवाल, इनका जवाब लिखा दो, या कोई पर्चियों पे लिख लिख के भेजना चाहे, कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो लिहाजा नतीजा क्या निकला कि जब एक इंसान दुनिया से जाता है खत्म, हाँ मगर तीन चीजें, औलाद, नेक औलाद जो उनके लिए दुआ करती है, और सदका जारिया का कोई काम जो अपने हाथों से करके गया, या इल्म की कोई बात जो दूसरों को सिखा के गया। अब आप देखिए कि औलाद का यहाँ तस्करा, पहली बात यह है कि जब लफ्ज़ औलाद आता है तो हर एक को अपनी औलाद याद आ जाती है, लेकिन असल ज़रूरत है अपने माँ बाप की औलाद को याद करने का, और वो कौन है? वो हम खुद हैं। हम ये तो चाहते हैं कि हमारी औलादें बहुत अच्छी हो जाएं, लेकिन ये कम ही चाहते हैं कि हमारे माँ बाप की औलादें भी अच्छी हो जाएं। क्या हमने अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं? देखिए मौत बरहक है, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, लेकिन ये हमेशा नहीं लगेगी दुआ, वक्त पे सबने जाना है। क्या हमने अपनी औलादों को इस काबिल कर दिया है कि हमारे लिए एक सदका जारिया बन जाए? ये तो जिंदगी में करने का काम है, ये तो नहीं होगा कि एक वसीयत का कागज लिख दे और कहें बेटा मैं मरूंगी तो उसको खोल के पढ़ लेना, और उसको खोलते ही देखो कि बेटा अब तुम कुरान पढ़ना, अब नमाजें पढ़ना, और हम सोचें कि हमारी मौत का सदमा हमारे बच्चों को आलिम और हाफिज और कारी बना देगा और आमिले दीन बना देगा। ये नहीं होगा, ये जिंदगी में करने का काम है। जिस तरीके पे हम अपने बच्चों को पालते हैं ना, असल में यही उनकी अगली जिंदगी के रास्ते बनाती है। बाज दफा हम अपने बच्चों की दुनिया बनाते बनाते इतने मसरूफ हो जाते हैं और उनको भी कर देते हैं कि उनकी आखिरत भूल जाते हैं। इसलिए इख्तसाब लाजिम है, सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए, कोई डराना धमकाना मकसूद नहीं है, सिर्फ शऊर को बेदार करने के लिए कि क्या हमारी औलादें इस काबिल हैं कि पूरे कुरान पाक को ठीक तरह से अदा कर सकें, समझ सकें, क्या उनको ठीक पढ़ना आता, क्या उनको अपने बारे में यानी ये सब चीज़ों का यकीन है कि उनको कल क्या करना है? क्या हमने अपने बच्चों को गुस्ल का तरीका सिखा दिया? हुक्म क्या है क्या आपका अपना आपको गुस्ल दे? क्या माओ ने अपनी बेटियों को ये तरीका सिखा दिया कि बेटा अगर मैं कल चली गई तो तुम मुझे गुस्ल देना? हम तो उस वक्त लोगों को ढूंढ रहे होते हैं और कोई ना मिले तो कहते हैं अब अम्मा को कौन नहलाएगा? क्या हमारे बेटों को नमाज जनाजा पढ़ानी आती है? ये माँ बाप का फर्ज है। क्या उनको वो दुआ आती है जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़े प्यार से नाजिल की कि रब्बे रहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह हमारे माँ बाप पे रहम फरमा जैसे उन्होंने उस वक्त रहम किया जब मैं छोटा था? ये हर एक का सवाल है अपने आप से। क्या हमारे बच्चे वाकई एक ऐसे इस्लाम पे पल रहे हैं कि जो हमारे बाद भी चलेगा? क्या दो चार नस्लें छोड़ने के बाद इस्लाम नापैद तो नहीं हो जाएगा, और वो हदीस सच तो नहीं हो जाएगी कि इस्लाम नहीं रहेगा मगर उसका नाम, और कुरान पढ़ा जाएगा मगर रस्म के तौर पर? इसको आज ही देखना है। और बच्चों को वही चीज़ अच्छी लगती है जो माँ बाप को अच्छी लगती है, वो हमारी दौड़ देख रहे होते हैं, हमारी दौड़ें किधर लगी हुई हैं। उसको पता है कि माँ सुबह उठ के भागती है दुनिया के लिए और बाप सारा दिन कमाता है, मुलाकात ही नहीं होती कई घरों में बच्चों और बाप की पूरा पूरा हफ्ता। बाप आता है तो बच्चे नहीं है, बच्चा आता है तो माँ बाप नहीं है। क्यों? कि वो उनके लिए नरम गद्दे खरीद रहे हैं, वो उनके लिए कमा रहे हैं, और फिर बड़े बड़े घर बन जाते हैं, लेकिन वो घर ऐसे नहीं बनते कि वहाँ मियाँ बीवी बच्चे बैठ के कुछ प्लानिंग्स कर सके। कुछ लोगों की सारी जिंदगी जुदाइयों में गुजर जाती है, शौहर कहीं फिर खबरें सुन के आते हैं फुला मर गया। मैं सोचती हूँ जब कोई मरता है तो उसका मुंह देखने के लिए कितना इख्तमाम करते हैं लोग, खासतौर पे अल्लाह ताला महफूज रखे, हम सबको बचा के रखे, और हमारे रिश्तेदार जो अपने मुल्कों में हैं, ना हम उनकी बुरी खबर सुने ना वो हमारी सुने, लेकिन बाज़ दफ़ा 10-10 साल के जुदा हुए हुए लोग डेड बॉडी पे पहुँचते हैं कि मैयत को मुँह देख लें। बस माँ बाप सारी जिंदगी रास्ता देखते रहते हैं बच्चों का। आजा बेटा, छोड़ क्या करने हैं पैसे, आजा आजा। अम्मा अभी नहीं अभी नहीं। और फिर आखिरी वक्त वो बच्चा एयरपोर्ट पे टिकट्स ढूंढ रहा होता है कि मुझे अपनी माँ का चेहरा देखना है, मुझे जाने दो। क्या होगा, चले गए वो। अब आप उनके लिए पीछे बैठे हैं। जिंदगी गुजारने का बड़ा ही गैर फितरी तरीका आज अक्सरियत ने अपना लिया। जहां रहना नहीं था वहां रहने की कोशिशें कर रहे हैं। जहां लीगल हो भी गए तो फिर भी जाना है, उसके पीछे आखरत को इलीगल करते जाते हैं और कहते हैं कि हमने इन बच्चों के लिए क्या कुछ किया। मैं सोचती हूँ क्या जितना बच्चों के लिए माँ बाप भाग दौड़ करते हैं, यकीन करें इसको वाकई एडमायर करना चाहिए, जितनी माएँ बच्चों के लिए मेहनत करती हैं और बाप। लेकिन नतीजे क्या निकल रहे हैं? जो माँ बच्चे के लिए सुबह उठ के नाश्ता पानी, उसका स्कूल, उसका लंच, उसके लिए सब कुछ, सुबह के वक्त ही देख लीजिए जब बच्चे घर से तैयार होके जाते हैं तो घरों का क्या नक्शा होता है। क्या आज हमारी सारी जिंदगी बच्चों के स्कूल के साथ नहीं चल रही? बच्चे की छुट्टी है तो हमारी भी छुट्टी, वीकेंड का दिन और वीकडेज में फर्क है ना। हम पाकिस्तान कब जाएंगे, बच्चों की छुट्टियां होंगी तो जाएंगे। हमारा सारा सेटअप बच्चों के स्कूल सिस्टम पे चलता है, और वो चीज जिसने हमारे बाद के लिए कुछ करवाना था उसको हफ्ते में कोई एक दिन, और वो भी नहीं। आप बिलीव कर सकते हैं उस माँ को नींद कैसे आती है कि 14 और 15 साल की बच्ची हो गई, अभी उसने कुरान शुरू ही नहीं किया, और बलूगत से ऊपर चले गए बच्चे और अब इनको नमाज ही नहीं आती। मैं हैरान होती हूँ क्या करें, कोई मिला ही नहीं पढ़ाने वाला, क्या करें, कोई पढ़ता ही नहीं। कहाँ जाते, बस वो मसरूफ थे, ये थे। यानी मैं अगर यहाँ बात शुरू कर दूंगी ना, इतनी कहानियां खुल जाएंगी कि मेरा भी दिल दुखेगा और आपका भी। लेकिन ये बहुत कड़वा घूंट है जो भरना पड़ेगा कि इस वक्त औलादों को वो नहीं दिया जा रहा जो देना है, और कल कयामत के दिन वो गिरेबान पकड़ेंगी। क्या आपने हमारी दुनिया बनाई, बताएं हमने क्या आपका बिगाड़ा था? हम तो मासूम आए थे, बच्चे कैसे आएंगे दीन पे? सवाल पैदा होता है जब हम ऐसी कोई बात सुनते हैं तो हम कहते हैं बस यही तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई सिखा दे, कोई आए और सिखा दे। देखिए कि असबाब तो बन जाते हैं लेकिन बच्चों को लाना है ना, तो हमें आना पड़ेगा, इसलिए कि हम भी किसी के बच्चे हैं। हमें नहीं पता कि जिनको याद कर करके हम रोते हैं ना, आहें भरते हैं, वो कब्रों में कितना बिलख रहे हैं हमारी वजह से। हम तो अपनी दुनिया में मगन होके खुशियां मनाते हैं ना कुछ दिन के बाद, और मैयत कब्र में इंतजार करती है कि कोई मेरे लिए दुआ कर दे। ऐन उस वक्त जब मैयत के उठाए जाने के बाद खाना खुलता है और कब्रिस्तान की तरफ ले जाते हैं, तो पीछे अमूमन अजीज व अकारब जो होते हैं उनके लिए खाना खुल जाता है, और अब वो भी खाने कुछ कम नहीं होते। उस खाने को खाते वक्त कोई इंसान सोचे ये आज कौन सा खाना खा रही हूँ, इस वक्त उनको किस चीज़ की ज़रूरत है। चूंकि बात छेड़ी है और औलाद की बात है, तो यहाँ चंद बातें कि मरने के बाद माँ बाप के लिए क्या किया जाए। अभी तक जितनी बात है ना, इसके बाद अगर एक नुक्ता नोट कर लें, अगर अल्लाह ताला मुझे भी तौफीक दे और हम सबको, कि जो ज़िंदगी गुजर गई वो तो गुजर गई, लेकिन आज से नियत करनी है कि अपनी मौत को याद करके पहले खुद अपने सीखने पढ़ने पढ़ाने का एहतमाम करना। देखिए क्या अल्लाह हमें माफ़ करेगा कि दुनिया में हमने कितनी किताबें पढ़ ली। मैंने कई दफ़ा लोगों से इस तरह के एस्टिमेट्स करवाए हैं बैठे बैठे दरसों में कि ये बताएं कि एमए तक पहुंचने में कितने साल पढ़ना पड़ता है। तकरीबन 18 से 19 साल। कितनी किताबें होती हैं, हर साल 7-8 किताबें लगा लें तो 100 के करीब किताबें बनती हैं। एक डॉक्टर मेडिकल का 100 से ज़्यादा किताबें पढ़ता है वो 5-6 साल में, तो सिर्फ वो मेडिकल में पहुंचा और उससे पहले के साल और उसके बाद के साल। लेकिन वो किताब जिसने ज़िंदगी गुजारने के तरीके बताने थे, जिसने कहना था कि आओ ज़िंदगी ऐसे गुजारो, इहदिनस सिरात अल मुस्तकीम, उसको खोलते हैं जब दुनिया से जाते हैं। अमूमन हमारे यहाँ सूरत फातिहा मरने वालों पे पढ़ी जाती है, हालांकि सिराते मुस्तकीम पे चलने की ज़रूरत तो जिंदाओं को है, तो लिहाजा नियत करनी है इस बात की कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार तो इस किताब को पढ़ लें।